नमस्कार भारत, तारीख 6 जनवरी दिन शनिवार, मैं हूं आदर्श राठौर। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की आपातकालीन बैठक बुलाने को लेकर कई सदस्य देशों ने की अमेरिका की आलोचना।
aussi préoccupante qu'elle soit,
however worrying the events of the last few days in Iran may be, they do not constitute.
कल खत्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र में छाया रहा तीन तलाक विधेयक, जानेंगे इस सत्र में क्या हुआ हासिल, क्या कुछ छूटा। जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के हालात से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की बात।
अपनी मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाबंदियां लगा रहा है हम पर।
होगी विवेचना भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका को ईरान में हुए प्रदर्शनों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने पर सुरक्षा परिषद में अन्य देशों की ओर से तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। चीन और रूस ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा है कि ईरान में हुए प्रदर्शन देश का आंतरिक मामला है। फ्रांस के दूत ने भी अमेरिका के बैठक बुलाने पर सवाल उठाया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिका जोर जबरदस्ती कर रहा है। वहीं न्यूयॉर्क में एक बैठक में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत निकी हेली ने कहा है कि सभी देशों को ईरान के लोगों का सहयोग करने के लिए और कदम उठाने चाहिए। निकी हेली ने कहा कि ईरान के लोग अपनी सरकार से ऊब गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ईरान पर नज़र रखे हुए है। सऊदी अरब में पेट्रोल की बड़ी कीमतों और नए बिक्री कर की वजह से जीवन यापन खर्च में आई बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए शाह सलमान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। शाह सलमान ने अगले साल से हर महीने $260 अतिरिक्त भत्ता देने की घोषणा की है। इस शाही आदेश के तहत यमन सीमा पर सेवा दे रहे सैन्य अधिकारियों को भी एकमुश्त $1,000 का अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। इस साल 1 जनवरी को सऊदी अरब में पेट्रोल उत्पादों की कीमतें दोगुना कर दी गई थीं और 5% वस्तु एवं सेवा कर भी लगाया गया था। तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से सऊदी अरब की सरकार तेल से आय पर निर्भरता कम करना चाहती है और इसी दिशा में ये कड़े आर्थिक फैसले लिए गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर विवादित किताब लिखने वाले लेखक अपनी किताब में लिखी हर बात को सही ठहरा रहे हैं। माइकल वुल्फ ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उनसे बात करने या व्हाइट हाउस में उन्हें प्रवेश की अनुमति देने की बात को नकारा था। बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक रही किताब फायर एंड फ्यूरी के लेखक का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 3 घंटों का समय बिताया था। माइकल वुल्फ ने अपनी किताब में ट्रंप पर कई तरह के आरोप लगाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति एक बच्चे जैसे हैं जो हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर चाहता है। उन्होंने ट्रंप को ऐसा व्यक्ति बताया है जो न किसी की बात सुनते हैं और ना ही कुछ पढ़ते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और व्हाइट हाउस ने इस किताब को झूठ का पुलिंदा बताया है। ट्रंप के पूर्व डिप्टी सहायक सेबेस्टियन गोरका ने किताब को खारिज करते हुए कहा,
You need to have a look at the disclaimer that the book has on page 10 that the Business Insider just published today.
आपको किताब के पृष्ठ संख्या 10 पर दिए गए डिस्क्लेमर को पढ़ना चाहिए। इसे बिजनेस इनसाइडर ने आज प्रकाशित किया है। अपनी पुरानी किताबों में झूठ बोलते हुए पकड़े गए लेखक माइकल वुल्फ ने स्वयं लिखा है कि वो किताब में दिए गए तथ्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करते हैं। अगर आप एक पत्रकार के तौर पर ऐसा करें तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये किताब इतनी ही सच्ची है जितनी हैरी पॉटर की कहानियां। वेनेजुएला ने अपनी सरकार के 4 अधिकारियों पर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को खारिज कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और प्रदर्शनों को दबाने में इनकी भूमिका थी। वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका देश अमरीका की साम्राज्यवादी और युद्धक नीतियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। ईरान में पिछले कुछ दिनों से हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की आपातकालीन बैठक बुलाकर अमरीका मुश्किल में फंस गया है। कई सदस्य देशों ने अमरीका के रुख की आलोचना की है। इस मामले पर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रहे हैं कुलदीप मिश्र।
ईरान में हुए प्रदर्शनों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने पर कई सदस्य देशों ने अमरीका की तीखी आलोचना की है। अमरीका ने ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई थी, मगर रूस और चीन समेत कुछ अन्य सदस्य देशों का कहना है कि ये ईरान का आंतरिक मामला है। फ्रांस के दूत फ्रैंकोइज डेलाट्रे ने कहा, ईरान में पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम चिंताजनक है, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। हमें सही ढंग से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। निजी फायदे के लिए संकट का लाभ उठाने की कोशिशों से बचा जाना चाहिए। ये थे फ्रांस के दूत फ्रैंकोइज डेलाट्रे। इसके कुछ मिनट पहले ही संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी दूत निकी हेली ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को बहादुर लोग कहकर उनकी तारीफ की थी।
Every UN member state is sovereign, but member states cannot use sovereignty as a shield.
संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य संप्रभु हैं, मगर वे इसकी आड़ में अपने लोगों के अधिकारों और आज़ादी का हनन नहीं कर सकते। मैं सभी सहयोगियों से अपील करती हूं कि ईरान के लोगों को संदेश को बल दें और ईरान सरकार से कहें कि वे लोगों की आवाज़ को दबाना बंद करें। ये थे निकी हेली के शब्द। रूस और चीन ने भी ईरान को लेकर अमेरिका के रुख की आलोचना की है। वहीं ईरान के दूत घोलामली खुशरू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में मिली अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दुनिया की नज़रों में अपनी नैतिक, राजनीतिक और कानूनी विश्वसनीयता खो दी है।
कुलदीप मिश्र बता रहे थे कि किस तरह से अमेरिका ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति की आपातकालीन बैठक बुलाकर फंस गया है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। जमातु दावा प्रमुख हाफिज सईद ने बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनीति में आने की अपनी योजना सामने रखी। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर भी बात की। सुनिए क्या कहा हाफिज सईद ने।
अमरीका भी इंडिया का हम नवाब बन गया और उसने भी हम पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी और पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया, तो फिर पाकिस्तान के कमज़ोर मुल्क है, सीधी बात है कि इनके माली मसाइल हैं, तो वो अपनी मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाबंदियाँ लगा रहा है हम पर। जब भी हम अदालत में गए हैं, अदालत ने हमारे दलाइल को कबूल किया है और ये वाजे किया है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा।
इसी सूबे के लॉ मिनिस्टर ने बीबीसी को ही अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि वो लोग जिन्हें स्टेट एसेट के तौर पर इस्तेमाल करती है, ये तवक्को रखना कि इस मुल्क की अदालतें उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देंगी, ये तवक्को नहीं रखी जा सकती।
फैसला करने वाली कुव्वत तो अदालत है, ये सियासतदान तो फैसले नहीं करते। और मुसलसल मुतअद्दद फैसले हमारे हक में आ चुके हैं। अगर पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर कोई बात कहता है या पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कोई बात कहता है, तो इनकी क्या हकीकत है? ये सियासत में एक दूसरे से भी लड़ते हैं।
लेकिन अगर एक मुल्क के इतने ज़िम्मेदार लोग इस तरह के फ़ैसलों से कन्विंस नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या पूरी दुनिया ये मान जाएगी सब बात?
यानी वज़ीर दिफा ने दो दिन पहले हमारे खिलाफ कितना सख्त बयान दिया, बल्कि बीबीसी को ही उसने इंटरव्यू देते हुए हमारे खिलाफ बात कही, लेकिन अब वो वजाहतें कर रहे हैं।
तो क्यों वजाहतें कर रहे हैं? डरते हैं आपसे?
डरते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने आप से या अपनी जमात से हमने कभी ऐसी चीज़ पेश नहीं किया, ना कोई डरे। मुसीबत है, पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान के माली मसाइल हैं, इनको हर वक्त इमदादें चाहिए।
क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान आपकी वजह से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार होता जा रहा है?
मेरा ख्याल है कि अब हालात बदल रहे हैं, पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को बिल्कुल साफ जवाब दिया है कि भाई आपकी इमदाद हमें नहीं चाहिए।
लेकिन आपके जो ग्रुप हैं, फ़लाह इंसानियत फाउंडेशन, जमात उदावा, इसके खिलाफ तो क्रैक डाउन शुरू किया जा रहा है।
हम अदालत में जाएंगे, जो भी हमारे खिलाफ अगर ये क्रैक डाउन होगा, अगर वह हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी।
लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये लगने लगा है कि शायद आप एक लाइबिलिटी हैं।
ख्वाजा आसिफ साहब ने अमरीका में बयान देते हुए मुझे लाइबिलिटी कहा था, میں نے ان کو لیگل نوٹس بھیجا. اس لیگل نوٹس پر انہوں نے مجھے جواب دیا اور معذرت کی کہ ان کا بیان صحیح نہیں تھا میرے بارے میں.
پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ ہپوکریسی کرتی ہیں آپ کے معاملے کے اوپر, دنیا کو کچھ اور بتاتی ہیں اور آپ کو کچھ اور بتاتی ہیں.
نہیں, وہ اصل میں یہ دباؤ کا شکار ہیں. کوئی پالیسی نہیں ہے پاکستان کے اندر. کیا دلیل ہے اس بات کی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوں؟
تو آپ سیاست میں پھر کیوں حصہ لینا چاہتے ہیں اور کیا آپ فوج کے ساتھ رابطے میں ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو یونائٹ کرنے کی, پاکستان کے لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے, اور اس بنیاد پر ہم پاکستان میں سیاست میں آ رہے ہیں.
ایک شخص جو کہ انٹرنیشنلی اتنا کنٹروورشل ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان پہ اتنا پریشر ہے کہ وہ جو ہے وہ یونائٹ کر سکتا ہے پاکستان کو.
لوگ مجھے سمجھتے ہیں, مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں.
تو آپ ملی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست میں آ رہے ہیں؟
انشاءاللہ آئیں گے جی.
اچھا, جو انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے, میں شواہد پر بات کرتا ہوں, میں خیالی باتیں نہیں کرتا. نریندر مودی ڈھاکہ میں گیا, ڈھاکہ میں کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں میرا کردار ہے, میں نے خون بہایا تھا. میں کہتا ہوں دنیا مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کرے اور اس کو بھی کھڑا کرے مودی کو, اور فیصلہ کرے کہ دہشت گرد کون ہے.
بتا دیں کہ بی بی سی نے پردھان منتری نریندر مودی پر حافظ سعید کے بیان پر پرتکریہ لینے کے لیے بھارت سرکار سے سمپرک کیا ہے اور ہمیں سرکار کے بیان کا انتظار ہے. بڑھتے ہیں آگے. امریکہ نے پاکستان کو دی جانے والی 25.5 کروڑ ڈالر کی سینک مدد روک دی ہے. امریکہ کے اس قدم کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا اور امریکہ پر کیا اثر پڑے گا؟ بی بی سی سنواداتا ابھیجیت شریواستو نے بات کی پاکستان میں موجود ورشٹھ پترکار ماریانا بابر سے.
تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کہ آپ ہمارے پیسے روک لیں, پاکستان کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پاکستان نے اپنے طرف سے بھی پیسے لگائے ہیں دہشت گردی کے خلاف. نیٹو کی جو ٹرک جاتے ہیں کراچی سے مال اٹھا کے افغانستان کے اندر تک, تو ہماری سڑکیں استعمال کرتے ہیں, ریسورسز استعمال کرتے ہیں. پاکستان نے کبھی بھی ان سے نہیں مانگا. شمسی ایئر بیس تھا جہاں سے امریکہ کے جہاز جا کے بمباری کرتے تھے افغانستان کے اندر, وہ بھی فری آف کاسٹ تھا. پھر پاکستان بھی کہے گا جی ہمیں آپ پیسے دیں, آپ نے ہمارے ریسورسز استعمال کیے ہیں. بلکہ فورن منسٹر خواجہ آصف نے اس دن ان کو چیلنج کیا کہ ہم ایک انٹرنیشنل آڈیٹر کو لائیں گے اور وہ دیکھے گا کہ آپ نے ہم کو کتنے دیے, کتنا ہمارا ڈیو ہے اور آپ نہیں دے رہے ہیں.
امریکہ کو گھاٹا کیا ہوگا اس کا؟
پاکستان میں چین نے, ترکی نے, باقی ملکوں کے ساتھ, رشیا کے ساتھ ڈیفینس پیکٹس ہوئے ہیں. تو پاکستان ابھی فوجی سامان کے لیے 100% ڈیپینڈنٹ نہیں ہے امریکہ کے لیے. امریکہ کو یہ حرج ہوگا, یہ نقصان ہوگا. امریکہ پاکستان کے بغیر کیسے اتنا کام کر سکے گا؟ ہماری ضرورت ہے ان کو. تو میرے خیال میں کہ یہاں شور شرابہ بڑا ہوا, پارلیمنٹ میں بھی بڑا شور ہوا, مگر جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ پاکستان سے گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال یہ بہتر طریقہ ہے جب تک پاکستان خود اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو اور بالکل ہی امریکہ سے امداد لینے کے بالکل ضرورت نہیں ہے امداد کے لیے. تب تک میرا خیال یہ اچھا رویہ ہے کہ بات چیت جاری رہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھایا جائے کہ بھائی کوالیشن فنڈ جو آپ نے بند کر دیا, یہ کوئی پاکستان پہ آپ احسان نہیں کر رہے, یہ پاکستان نے کچھ کام کیے ہیں دہشت گردی کے خلاف جس کا وہ ابھی پیسے مانگ رہا ہے.
ورشٹھ پترکار ماریانا بابر بتا رہی تھی کہ امریکہ کی طرف سے سینیہ مدد رکنے کا پاکستان پر کیا اثر پڑنے والا ہے. اور اب جانتے ہیں کہ آج بی بی سی انڈیا بول کا وشے کیا ہے.
بی بی سی انڈیا بول. تین طلاق کو اپرادھ گھوشت کرنے سے کیا مسلم سماج میں سدھار ہوگا یا یہ صرف ایک راجنیتک پیترا ہے؟ یہی ہے اس بار بی بی سی انڈیا بول کا وشے. کارکرم میں شامل ہونے کے لیے 6 جنوری شام 7:30 بجے سے 8 بجے کے بیچ مفت فون کریں 1811-7000 اور 1811-7001 پر.
بی بی سی انڈیا بول.
سنسد کا شیتکالین ستر کل ختم ہو گیا. ایک طرف سنسد میں جہاں کانگریس آکرامک تیور میں دکھی, وہیں بھاجپا بھی پیچھے ہٹتی نظر نہیں آئی. تین طلاق ودھیک اس قدر چھایا رہا کہ ایسا لگا ہی نہیں کہ کسی اور مدعے پر بھی سنسد میں بات ہوئی ہو. کیا کچھ ہوا اس بار, سنیے بی بی سی سنواداتا دل نواز پاشا سے.
गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म हुआ और कुछ उसी शोर शराबे की परछाई लिए हंगामे के बीच शुरू हुआ भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र। 15 दिसंबर को सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाए आरोपों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। नतीजा ये हुआ कि कई दिनों तक सत्र चल नहीं सका।
भूतपूर्व प्रधानमंत्री पर
विषय पे मत जाइए।
पति पर
आपको जो विषय बजे मेरा ध्यान में रहा है, बस आपने नोटिस दिया
वही आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के साथ
बाद में कामकाज शुरू हुआ तो तलाक विद्दत को गैर कानूनी करार देने वाले तीन तलाक बिल को लेकर मामला एक बार फिर गर्मा गया। कांग्रेस और कई पार्टियों ने इसमें संशोधन की मांग की, बहस चली, आखिर लोकसभा में बिल पास हो गया।
मैडम स्पीकर, आई मूव द बिल दैट द बिल मे काइंडली बी पास्ड।
द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास्ड।
लेकिन तीन तलाक बिल भी आगे राज्यसभा में जाकर लटक गया। विपक्ष ने तीन तलाक देने पर सजा के प्रावधान का विरोध किया और इसे संसद की स्थायी समिति को सौंपने की मांग की, जिसे सरकार ने नहीं माना है। अब इस बिल पर कोई फैसला अगले सत्र में होना ही संभव है। इस बार के सत्र में कई अहम बिल पास हुए, जिनमें नाबार्ड संशोधन बिल 2017 और संशोधन के साथ ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक 2017 भी शामिल है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी संशोधन बिल और जीएसटी संशोधन बिल भी राज्यसभा में अटक गए हैं। बीते साल 15 दिसंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार ने कुल 16 बिल पेश किए थे, जिनमें से 12 बिल पारित हुए, जबकि राज्यसभा में इस दौरान कुल 9 बिल पास किए गए। इस दौरान शोर शराबे के कारण कई बार सत्र स्थगित हुआ और लोकसभा में करीब 15 घंटे बर्बाद हुए, जबकि राज्यसभा में 34 घंटे काम नहीं हो सका।
इस बार शीतकालीन सत्र किस तरह से खास रहा, हमारी सहयोगी मानसी दास ने बात की संसदीय मामलों की जानकार वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामशेषन से और पूछा कि इस सत्र में क्या क्या हासिल हुआ और क्या क्या छूट गया।
ये जो विंटर सेशन रहा, ये इतना लेजिस्लेटिव सेशन नहीं रहा जितना एक पॉलिटिकल सेशन रहा। और जो सरकार है, जो बीजेपी है, उन्होंने तीन तलाक का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि ये शीतकालीन सत्र जो है वो ये तीन तलाक वाला मामले से पूरी तरह छाया हुआ था और दोनों पक्षों ने इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है और सरकार जो है, उन्होंने अपना निर्णय कर लिया कि इसे सिलेक्ट कमेटी में हम किसी भी हाल में नहीं भेजेंगे। अगर सरकार स्वीकार करती कि हम सिलेक्ट कमेटी में भेज दें, जो विवादित पॉइंट्स है वो कुछ हद तक सुलझे जा सकते थे। क्योंकि कांग्रेस का रवैया आप देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये बिल के खिलाफ हैं, उन्होंने कहा कि हम ये क्लॉज के खिलाफ हैं। लेकिन सरकार तो अड़ी हुई थी और इसका क्या निष्कर्ष हम निकालें। अब आपको बजट सत्र भी इस महीने के आखिरी में ही शुरू हो रही है 29 तारीख से, तो उसमें तो नहीं लगता है कि ये बिल आएगी। कर्नाटका में चुनाव आ रहे हैं और कर्नाटका में मुसलमानों की आबादी तो गुजरात से तो ज्यादा है ही है, तो कहीं ना कहीं वो ये कर्नाटका के चुनाव में ये मसला जरूर उठेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पे चली गई। लोकसभा में तो नंबर्स है ही हैं बीजेपी के पास, तो विपक्ष जितना भी विरोध करती, बीजेपी तो जो सरकार है वो तो पास करती ये विधेयक। राज्यसभा में वहां पे कांग्रेस ने अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, तो उन्होंने लीड लिया, तृणमूल थोड़ा पीछे हट गई। पर एक सफलता जरूर पाया विपक्ष ने, जो तेलुगु देशम पार्टी है, जो सीधा सीधा एनडीए की अलाय है, उसने इसका विरोध किया।
वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, आज के सभी अखबारों में तीन तलाक के बिल की ही बात है और बताया जा रहा है कि राज्यसभा में बिल लटक गया है। एक अखबार हिंदुस्तान कह रहा है कि सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाएगी, वहीं एक और अखबार ने कहा है कि ऐसी संभावना नहीं है। इसके अलावा भारत के जीडीपी की जो विकास दर है वो 6.5% रह सकती है और ये बीते 4 सालों में सबसे कम होगी, ये खबर आज के सभी
अनुमान लगाया गया।
बिल्कुल, आज के सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है, गणतंत्र दिवस की वजह से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर 1000 उड़ानें रद्द हो सकती हैं। ये खबर आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में है। इसके अलावा दैनिक भास्कर में एक बड़ी रोचक खबर है, हरियाणा से है। वहाँ एक महिला वकील ने जज को हनी ट्रैप में फंसाकर पर्चा लीक करा दिया और ये पर्चा 10-10 लाख रुपए में बेच दिया। तो ये ऐसा मामला हरियाणा में हुआ है। इसके अलावा एक और खबर हिंदुस्तान में है। इस खबर के मुताबिक 80,000 शिक्षक ऐसे हैं जो एक से अधिक संस्थानों से वेतन ले रहे थे और ये पता चला है आधार के जरिए। दूसरे अखबार ने इसी खबर पर लिखा है कि 80,000 अदृश्य शिक्षक पकड़े गए। इसके अलावा एक और खबर जो है जो ज़्यादातर अखबारों में पहले पन्ने पर है, वो पाकिस्तान को सैन्य मदद अमेरिका ने रोक दी थी। कल हमने ये खबर दी थी, आज ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज। पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो की गिनती दुनिया के सबसे बुद्धिमान और पढ़े लिखे नेताओं में होती थी। 1977 में एक सैनिक विद्रोह में जनरल जियाउल हक ने उनका तख्ता पलट दिया और 2 साल के बाद एक विवादास्पद मुकदमे के बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की 90वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको किस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे? तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे।
ये आवाज है पाकिस्तान में लाखों लोगों को अपने जोशीले भाषणों से चमत्कृत कर देने वाले और अपने समय के सबसे जहीन राजनेता माने जाने वाले जुल्फकार अली भुट्टो की। भारत में उनको कुछ खास पसंद नहीं किया जाता था क्योंकि पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 दोनों लड़ाइयों में उनकी जबरदस्त भूमिका थी। वैसे पाकिस्तान में भी भुट्टो के प्रशंसकों और विरोधियों के दो गुट बने हुए थे, या कहिए अभी भी है। या तो आप उन्हें पसंद करते हैं या वो आपको फूटी आंखों नहीं सुहाते। दिलचस्प बात यह है कि भारत के धुर विरोधी रहे भुट्टो की किशोरावस्था मुंबई में बीती थी और एक जमाने में स्वतंत्र पार्टी के नेता और मशहूर भारतीय सांसद रहे पीलू मोदी उनके सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे। भुट्टो पर एक किताब लिखने वाली और योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा सैयदेन हामिद बताती हैं।
शुरू में ये जब पीलू मोदी के साथ ये दोनों नौजवान लड़के 13-14 साल के थे, ये लोग जाते थे मसूरी और वहाँ जाके वो शार्लेविल होटल होता था उसमें ये लोग रहते थे। जब खाना आता था तो जो पुडिंग सर्व होती थी पुराने ब्रिटिश अंदाज में, वो चुपके से थोड़ी सी रख लेते थे क्योंकि नौजवान लोगों का एपेटाइट बहुत था। बहुत दोस्ती थी दोनों की आपस में।
उस जमाने में भुट्टो के नज़दीकी दोस्तों में पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर रहे उमर कुरैशी और भारत के नामी क्रिकेट खिलाड़ी मुश्ताक अली हुआ करते थे। मुंबई के कैथेड्रल स्कूल में पढ़ाई करने के बाद भुट्टो अमेरिका चले गए जहां उन्होंने बर्कले विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान की डिग्री ली। 1953 में जब वो पाकिस्तान लौटे तो उनकी मुलाकात नुसरत इस्फहानी से हुई। भुट्टो के जीवनीकार स्टैनली वॉलपर्ट ने इस मुलाकात का बहुत दिलचस्प वर्णन अपनी किताब सुल्फी भुट्टो और पाकिस्तान में किया है।
बेगम नुसरत ने मुझे बताया था कि पहली बार उन्होंने भुट्टो को तब देखा जब वो एक शादी में जेवर पहनने के लिए उन्हें निकालने बैंक गई थी। भुट्टो भी अपनी माँ के साथ जेवर निकालने बैंक आए हुए थे। उनकी माँ ने मुझे देखते ही कहा, कैसी हो नुसरत, इससे मिलो, ये है मेरा बेटा सुल्फी। पहली नज़र में वो मुझे ज़रा भी आकर्षक नहीं लगे। उनकी बहन की शादी पर हमारी दोबारा मुलाकात हुई। वलीमे में वो मेरे साथ डांस करने लगे। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ने की कोशिश की। मैंने फुसफुसाकर कहा, ये पाकिस्तान है जनाब, अमरीका नहीं। जुल्फी ने यह सुनकर जोर का ठहाका लगाया। उनकी हिम्मत देखिए कि खाना खत्म होने से पहले उन्होंने मुझे अपनी कार में मेरे घर छोड़ने की पेशकश कर डाली। मैंने कहा, मैं अपनी कार लाई हूँ, आप ये जहमत मत करिए। वो इतने ढीठ थे कि बोले, चलिए हमारे साथ आइसक्रीम ही खा लीजिए। मैंने साफ इनकार कर दिया।
इस शुरुआती ना के बाद नुसरत ने हाँ कर दी और दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए। भुट्टो ने राजनीति में कदम रखा और अयूब खां के मंत्रिमंडल में कई पदों पर काम करने के बाद मात्र 34 साल की उम्र में वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बन गए और इस रोल में उन्होंने पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवाया। स्टैनली वॉलपोर्ट अपनी किताब में भुट्टो और कैनेडी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा लिखते हैं।
भुट्टो कैनेडी को पसंद करते थे और कैनेडी भी उन्हें चाहते थे। एक बार जब वो कैनेडी से विदा लेने से पहले उनसे हाथ मिला रहे थे तो कैनेडी ने कहा, अगर तुम अमरीकी होते तो मैं तुम्हें अपने कैबिनेट में ले लेता। भुट्टो ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर मैं अमरीकी होता तो मैं आपकी जगह होता।
राजनीति में भुट्टो नेहरू को अपना आदर्श मानते थे। विदेश मंत्री के रूप में भुट्टो की प्रतिभा निखर कर सामने आई। मैंने सईदा हामिद से पूछा कि विदेश मंत्री के रूप में वो कितने सफल रहे।
Astoundingly, यानी जो उन्होंने तकरीरें की, उनकी जो यूनाइटेड नेशंस में तकरीरें हुई 1965 में और फिर 1971 में, लैंडमार्क तकरीरें थी। एक छोटा सा मुल्क विद मोस्टली जो रिटन ऑफ था दुनिया की नज़रों में, और छोटे ममालिक के साथ उसको एक डिग्निटी देना, दिस वाज अ बिग कंट्रीब्यूशन जिसको कोई रिकग्नाइज नहीं करता। और एक पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अपने कागज़ फाड़ के और फेंके और ये कहे कि आई विल बी अ कंस्ट्रेंड कि यूनाइटेड नेशन इज नॉट फुलफिलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स मैंडेट, हम छोड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन करके, और स्टॉर्म आउट कर किया उन्होंने। और ये इत्तेफाक से उस ज़माने के कैमरे ने कैप्चर किया है, जो आपने यकीनन उनकी इमेजेस देखे होंगे। तो इन अ सेंस ही स्पोक फॉर द स्मॉल कंट्री।
व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम हियर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? आई विल नॉट बी अ पार्टी टू द इग्नोरस सरेंडर ऑफ पार्ट ऑफ माय कंट्री। You can take your security council. Here you are. I'm going.
भारत में भुट्टो के इस वॉकआउट को हूट किया गया, लेकिन पाकिस्तान में इस ड्रामाई भाषण से वो युद्ध हारने के बावजूद रातों रात हीरो बन गए। न्यूयॉर्क से लौटते समय वो रोम में रुके, जहां याह्या खान ने उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए PIA का विमान भेजा। एक जमाने में भुट्टो के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे गुलाम मुस्तफा खार याद करते हैं।
मैंने जुल्फकार अली भुट्टो को फोन पे ये कहा कि मैंने कहा, सर आप वापस आ जाए। मुझे उन्होंने कहा कि यार मुझे मरा तो नहीं दोगे, क्या है? मैंने कहा मैं फोन पे तो नहीं बात कर सकता, हमारे मुल्क के सारे फोन तो डब्ड होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये टर्न की जॉब है, यू जस्ट कम एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट।
भुट्टो को सीधे हवाई अड्डे से प्रेसिडेंट हाउस ले जाकर याह्या खां के स्थान पर राष्ट्रपति पद और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का पद सौंपा गया।
याह्या खान बैठा था उस वक्त सवेरे इंतजार में, तो उसने कहा याह्या खान ने, हाँ मिस्टर भुट्टो, हमने ये फैसला किया है कि यू आर द इलेक्टेड लीडर एंड यू शुड बी हैंडेड ओवर पावर। तो फिर आर्मी में एक होता है कर्नल, उसको मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो जैक कहते हैं उसको, तो उसको बुलाया और उसे कहा इज देयर एनी वे? उसने कहा यहाँ एक ही सूरत है कि अगर भुट्टो साहब को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की पार ट्रांसफर की जाए। तो फिर वही कागज बनाया जिसमें ये जो इसहाक खान हमारे प्रेसिडेंट बाद में बने थे, ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे, इनको भी बुलाया और वो जैक ने और इनने बैठ के वो मुसद्दा तैयार किया, और भुट्टो साहब ने इनकी याह्या खान की ये ख्वाहिश को मुस्तरद कर दिया कि मैं आपको प्रेसिडेंट नहीं बना सकता, अगर आपको मैंने प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर दिया तो मेरी भी सूरत हाल पॉलिटिकली बहुत खराब हो जाएगी और आप भी नहीं रहेंगे, कोई और आ जाएगा।
भुट्टो ने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ की तर्ज पर रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया। भारत से शिमला समझौता कर 93,000 युद्धबंदियों को छोड़ाकर वापस लाने को पाकिस्तानी जनता ने उनकी एक उपलब्धि के तौर पर देखा।
जुल्फकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से।
जुल्फकार अली भुट्टो से सबसे बड़ी चूक तब हुई जब उन्होंने एक जूनियर सैनिक अफसर जियाउल हक को पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बना दिया। यही जियाउल हक बाद में भुट्टो की मौत का कारण बने।
दिस इज रेडियो पाकिस्तान। A press note issued by the Ministry of Interior in Islamabad today says following conviction by the Lahore High Court in the Nawab Mohammad Ahmed Khan murder case and subsequent rejection of his appeal by the Supreme Court, Zulfiqar Ali Bhutto was hanged to death at 2 o'clock this morning in Rawalpindi District Jail.
Mera raasta jo raasta amaan ka.
Rehan Fazal, BBC, Delhi.
विवेचना कैसी लगी बताइएगा जरूर। मुख्य समाचारों के लिए समय नहीं है, लेकिन देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप bbchindi.com पर आ सकते हैं। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा के इस अंक में इतना ही। स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने और फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया मीना कोतवाल ने। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।